السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الذين اباغنا اتنی خوبصورت آیات آ رہی ہیں، یہ اتنی خوبصورت ہیں یہ آیات، جو سمجھ لیں، مجھے تو لگتا ہے کہ اس سورت کی ہائی لائٹ آپ کر لیں آیات، یہ اتنی خوبصورت ہے. الذين يحملون العرش، وہ جو عرش کے اٹھانے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ بڑے ہیوج فرشتے ہیں نا. میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں ان کے بارے میں بتاؤں، جو عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں، کہ میں ان کے بارے میں تمہیں آگاہ کروں. تو میں تمہیں حامل عرش فرشتوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس فرشتے کی کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. 700 ایئرز، یہ سب سے شارٹیسٹ ڈسٹینس ہے. ہمارا کتنا ہے؟ ایک ہاتھ بھی نہیں ہے پورا، ٹھیک ہے، چند انگلیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، آپ رکھ کے دیکھیں. اور ان کا 700 سال کا فاصلہ ہے. اب ہم امیجن کریں کہ وہ فرشتے کتنے ہیوج ہیں، اور وہ اس وقت کتنے ہیں؟ 4 ہیں. اور قیامت کے دن کتنے ہوں گے؟ 8 فرشتے. سورہ حاقہ میں ہے نا، 8 فرشتے اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. تو وہ فرشتے، وَمَنْ حَوْلَهُ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں. کس کے ارد گرد؟ عرش کے. ہو کی ضمیر عرش کی طرف جا رہی. عرش کے ارد گرد کتنے فرشتے ہیں؟ ایک تو ہے نا بیت المعمور، اس کی نہیں میں بات پوچھ رہی، عرش کے گرد کتنے فرشتے ہیں؟ میں نے آپ کو پچھلی آیا سورہ جو ہے نا ختم بھی ہوئی تھی اسی پہ، کہ وہاں پہ عرش کے گرد فرشتے ہوں گے اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اتنے ان گنت فرشتے ہیں، ان کی تو کوئی تعداد کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا، اس کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ کتنے زیادہ ہوں گے. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بعض عرش کے بعض حصے کے گرد ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ عرش کے پورے عرش کا احاطہ تو کر ہی نہیں سکتے. عرش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین مخلوق ہے، وہ سب سے بڑی مخلوق ہے، لارجسٹ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کب سے ہے؟ عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے نا. آسمان اور زمین ابھی اللہ نے پیدا نہیں کیے تھے جب سے یہ مخلوق ہے، کیونکہ آتا ہے نا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا، تو اس کا مطلب یہ مخلوق پہلے سے ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے. کیسے ہے یہ نہیں ہم جانتے، عرش کتنا بڑا ہے یہ بھی نہیں ہم جانتے، مگر ہمیں یہ پتا ہے عرش عظیم آتا ہے اور عرش کریم آتا ہے. رب العرش العظیم، عظیم عرش کا مالک، کریم عرش کا مالک. اچھا، اب اس کے گرد جو فرشتے ہیں، تو اب یہ دیکھ لیں کہ یہ فرشتے کون ہوں گے. سوچیں، یہ وہ فرشتے ہیں جو مقربین میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب، کیونکہ اس کے عرش کے اٹھانے والے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عرش کے گرد ہیں، تو یہ کتنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے نا، کتنے زیادہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام رکھنے والے ہوں گے. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، تسبیح کے ساتھ اس کی حمد بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر، کہ ان کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے ان کی تسبیح کے، 4 کی تسبیح ہے، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، सुभानक अल्लाहुम्मा भी जानते व भी हमदिका लकल हमदू, तेरी तारीफ है। अला हिल्मिका बादा इल्मिका, तेरा हिल्म कितना है इसके बावजूद कि तुझे हिल्म है, सुभान अल्लाह, फिर भी तेरी बर्दाश्त कितनी है अल्लाह इसके। देखिए एक तो पता ही ना हो, अब पता ही नहीं है कि बच्चा जो है ना चीजें तोड़ रहा है, तो आप बर्दाश्त करके यहां पे बैठी हुई, बर्दाश्त है आपकी किस बात की? आपको तो पता ही नहीं है कि वो कुछ खराबी कर रहा है। बात तो ये हो कि पता भी है फिर भी बर्दाश्त करना, कि वो देख रहा है ये सारे मेरी नाफरमानियां कर रहे, फिर भी उसकी बर्दाश्त, उसका हिल्म। और दूसरों की तस्बीह क्या है, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक लकल हम्दु आला अफवी का बादा कुदरत, देख के तेरी माफी तेरी कुदरत के बावजूद कि तू दरगुजर करता है, इसके बावजूद कि तू पकड़ सकता है, एक कुन कहे तो इनकी पकड़ आ जाए, ये इसके बावजूद तू माफ कर देता है। जब इंसान के पास कुव्वत ना हो ना, फिर तो इंसान का तब पकड़ सकता ही नहीं हो, जी हमने माफ कर दिया। क्योंकि जब कोई जैसे अमीर है वो किसी गरीब को कुछ जुल्म कर देता है, वो बेचारा गरीब क्या करेगा, कहता जी माफी है हमने क्या कहना है, वो उसके पास ताकत ही नहीं। तेरे पास ताकत भी है फिर भी तू माफ करता है, पकड़ने की ताकत है फिर भी तू जाने देता है, छोड़ देता है, दरगुजर कर देता है। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी है तस्बीह, हाथ है हम भी कर सकते। तो वो अल्लाह ताला की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं। और वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अफजलु जिक्र किया, तो आपने फरमाया वो जो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों के लिए चुन लिया है, और वो है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाहु अकबर। तो सुभान के तस्बीह क्या है, अल्लाह को पाक करार देना हर ऐब से, हर किस्म के नक्स से, हर किस्म की कमजोरी से, औलाद से और बीवी से और बुढ़ापे से और हर किस्म की कमजोरी से। और हम्द क्या है कि सारी तारीफों के कमाल, हर कमाल तारीफ उसके लिए है। वयुमीनून भी, और वो ईमान रखते हैं उस पर, किस पर, अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाले। ये क्यों कहा गया अल्लाह पर ईमान रखने वाले, जाहिर है वो फरिश्ते हैं तो अल्लाह ताला पर तो ईमान रखते ही होंगे ना। हाँ, तो ये क्यों कहा गया, आपके जहन में क्या आता है, ये क्या वजह होगी, सोचा करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने देखे हम जमीन पे ईमान वाले किस हालत में है, मक्की जिंदगी का सोचे, या बाद में भी ईमान वाले किस हालत में है, या आज भी ईमान वालों की क्या हालत है, बहुत ही कमजोर, बहुत ही ये, बहुत ही इनको छोटा समझा जा रहा है, हकीर समझा जा रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है, इनका क्या हाल, और ये उनको लेट डाउन किया जा रहा है, हर जगह से धुतकारा जा रहा है। तो याद रखो ये ईमान जो है ना, इसको कोई छोटी चीज ना समझो कि ये ऐसी ही है बेकार सी चीज, ये तो इतनी बड़ी चीज है कि वो अल्लाह ताला के मुकर्रबीन भी ईमान लाते हैं अल्लाह पर। अच्छा ऐसे इसको समझे, आपको कहा जाए कि प्रेसिडेंट भी जो है ना वो फलां क्लब का मेंबर है, वो सबको पता है कि वो फलां बड़ा वो क्लब हो या बड़ी लीग है कुछ का मेंबर है, और अब आप लोगों को बताती हैं मैं भी उसकी मेंबर हूँ, तो कितने फखर से बताएंगी ना, क्योंकि सबको पता है कि असल में उस क्लब में तो बड़े बड़े बादशाह और वजीर और वो ही जाते हैं, वो ऐसी जगह है। तो आप कहेंगे मेरे पास भी उसकी मेंबरशिप है तो क्या मतलब होगा, बताया जा रहा है वो भी ईमान रखते हैं और तुम भी ईमान वाले हो, तो आपका किसके साथ रिश्ता मिलाया गया, वो जो अर्श को उठाने वाले फरिश्ते और जो उनके इर्द गिर्द है अर्श के, अल्लाह ताला के मुकर्रबीन, कितना बड़ा शर्फ है ईमान वाले के लिए, कितना अल्लाह ने उसको बुलंद कर दिया कि तुम अपने आप को क्यों छोटा समझो, अगर दुनिया तुम्हें थू थू कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे ईमान की कोई वैल्यू नहीं है, देखो तो सही कौन है जो ईमान वाले हैं, हामिली ने अर्श और जो अर्श के इर्द गिर्द वाले फरिश्ते हैं ये ईमान में तुम्हारे साथी हैं, ये भी ईमान वाले हैं। अब ईमान वाले को कितना हौसला मिलता है, उसका फखर से बुलंद हो जाता है कि मैं ईमान वाला हूं, सारी दुनिया अगर बेईमान हो जाए काफिर हो जाए तब भी मुझे क्या परवाह है कि मेरे रब के अर्श को थामने वाले भी ईमान वाले, कितनी बड़ी वैल्यू है ईमान की, और ईमान का रिश्ता कितना मुकद्दस है, ईमान छोटी बात नहीं है, इसको मामूली ना समझो, आखिर हामिली यानी अर्श भी ईमान वाले हैं। तो इससे इंसान में कॉन्फिडेंस आता है और इंसान उठ खड़ा होता है कि वो कहाँ अर्श के पास वाली मखलूक और मैं कहाँ फर्श पे, और हम दोनों ईमान में एक दूसरे के साथी हैं, ईमानी साथी हैं। फासलों से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो इतनी दूर है, वो इतने अल्लाह के करीब है जमीन पे, लेकिन मैं और वो हम एक ही चीज पे ईमान रखते हैं। आज आपको फखर हुआ अपने ईमान पे? हाँ? कभी शर्मिंदा ना हो इस पे, कभी ऐसे लोगों में जाए जो काफिर हो या जो ईमान की पता नहीं सो कॉल्ड मुसलमान हो, उनको कोई ईमान का नहीं पता, तो कभी अपने आप को कमतर ना समझे कि हाय मैं क्या इसके अंदर पता नहीं फंस गई, और ये देखो सारे इतने अप टू डेट मॉडर्न और मैं क्या चीज हूँ। नहीं, आपका रिश्ता उन ईमान वालों के साथ है, आपस में भी ईमान वालों का रिश्ता ईमान की बिना पे होता है, और ये सबसे खूबसूरत रिश्ता है जो ईमान की वजह से होता है। इसीलिए ईमान की वजह से दूसरे की इज्जत करें कि ये भी मेरा ईमानी साथी है, ये भी मुसलमान है, और वो भी ईमानी साथी है जो हामिली ने अर्श है। अल्लाह ताला ने इतने ऊंचे फरिश्तों की बात करके हमें रियलाइज कराया कि तुमने क्या समझा वह ईमान किया है। वो किस पे ईमान लाते हैं? अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाले हैं, और ईमान का मतलब ये नहीं होता कि वह ईमान तो मेरा है मुंह से बोलना और उसके बाद दिल के अंदर कोई मानना है ही नहीं, ये नहीं ईमान होता, बल्कि ईमान होता है गैब का, को गैब में जो कुछ है उसको मान लेना और दिल से मान लेना, लेकिन अगर दिल में शकुको शुभात हो, और अगर ये हो कि हमने कहाँ देखा है, क्या पता ऐसा है अभी के नहीं, तो फिर कोई ईमान नहीं है। देखिए, हालांकि इन फरिश्तों ने अल्लाह ताला को देखा नहीं हुआ, देखा नहीं हुआ इन्होंने, आप सोचते हैं इन्होंने देखा हुआ? नहीं, इन्होंने नहीं देखा हुआ, फिर भी वो ईमान रखने वाले हैं। अल्लाह हू अकबर। फिर हम क्या कहेंगे? नहीं, हमने पहले देखेंगे तो फिर हम ईमान लाएंगे। ये ईमान जो है ना, ये जो गैब में अल्लाह पर ईमान लाना है, इसकी इतनी वैल्यू है कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मिश्का की हदीस है, कि सहाबा से पूछा तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा हसीन ईमान किसका है? सहाबा ने फरमाया बड़ा सोच के मलाइका का। आपने फरमाया मलाइका वो कैसे ईमान नहीं लाए जबकि उनकी निगाहों के सामने जन्नत जहन्नुम है। जाहिर है वो तो ईमान लाएंगे, जन्नत जहन्नुम तो काफरों के सामने अभी आ जाएगी, तभी वो भी ईमान ले आएगा, फिरौन भी ईमान ले आएगा। तो सहाबा ने सुन के सोच के फिर फरमाया फिर नबियों का ईमान, तो आपने फरमाया वो भी ईमान क्यों ना लाएंगे जबकि इन पे तो वही उतरती है, यानी उनके पास तो फरिश्ता आता है, वो तो ईमान लेकर आएंगे ही, डायरेक्ट उनके ऊपर अल्लाह का पैगाम उतर रहा है। फिर साहबा से नहीं, फिर बड़ा सोचा, फिर उन्होंने बड़ी हिम्मत करके कहा कि फिर हमारा ईमान लाना, हम भी तो हैं फिर, मतलब इसके बाद उन्होंने सोचा हम हैं। तो आपसे सलाम ने फरमाया तुम कैसे ईमान नहीं लाओगे जबकि मैं तुम में मौजूद हूँ, यानी अल्लाह का रसूल तुम में है, तो जाहिर है तुम तो ईमान लाओगे, हमारे सामने अल्लाह की आयतें उतर रही हैं, तो जाहिर है ईमान लाना आसान तो हो गया ना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे हसीन ईमान उनका है जो मेरे बाद आएंगे, उनको ये सहीफे मिलेंगे जिनमें अल्लाह की किताब दर्ज होगी, वो इस पर ईमान लाएंगे, मैं मौजूद नहीं हूंगा, और वो मुझे बिन देखे मान लेंगे। अल्लाह हू अकबर। सबसे ज्यादा बड़ा ईमान उनका है, जो आज के दौर के हैं, जो हमसे पहले के दौर के लोग, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी नहीं और ईमान लाए। तो ये ईमान बड़ा ही जबरदस्त है, लेकिन अगर ये कामिल हो, वाकई ईमान हो, इसके अंदर कोई शिर्क ना हो, इसके अंदर कोई शकुक व शुभात ना हो, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्शंस ना हो, यूमिनूना भी व यस्तगफिरूना लिल्लदीना आमनू, और वो इस्तगफार करते हैं उनके लिए जो ईमान लाए। उनका काम क्या है? वो तस्बीह करते हैं अल्लाह की उसकी हम्द के साथ, और इस्तगफार करते ईमान वालों के लिए। ईमान वाले कितने खुशनसीब हैं कि उनके लिए इस्तगफार कहाँ पे हो रही है, अर्श के इर्द गिर्द, अर्श के उठाने वाले। मैंने आपको इसीलिए बताया कि अर्श के इर्द गिर्द कितने फरिश्ते हैं, हमें इसकी गिनती का अंदाजा नहीं है, पता नहीं कितने हैं, मगर जाहिर है बहुत ज्यादा है। और ये फरिश्ते हैं जो इस्तगफार मांग रहे हैं ईमान वालों के लिए। अंदाजा कीजिए, अगर मुझे और आपको पता चल जाए कि हमारे लिए हरम में काबा के आगे इमाम काबा ने हमारे लिए बख्शिश की दुआ मांगी है, और वहां पे सारे हाजी थे और इतना हजूम था और इतना भरा हुआ था, पूरा पूरी मस्जिद भरी हुई थी, लाखों लोग थे, सबने आमीन कही है, तो हमारी क्या हालत हो, हमारी खुशी का अंदाजा क्या हो। यहाँ पे हमें पता चलता है वो तो फिर भी इंसान है ना, ये तो मलाइका है जिनकी कभी इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, और ये अल्लाह ताला के बहुत करीब भी हैं, और इनकी दुआ रद्द ही नहीं हो सकती। और जाहिर है ओ मेरे रब तू कितना करीम है, जाहिर है ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया, यफ़अलूना मा युमरून, वो ही करते हैं जो उनको हुक्म दिया जाता है, खुद से नहीं करते। वो इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं ईमान वालों के लिए, तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया ही होगा तो कर रहे हैं ना। अल्लाह हू अकबर, या रब तेरे करम का अंदाजा हम नहीं कर सकते। हमा कदरुल्लाह हक कदरी, हमने अल्लाह ताला की कदर पहचानी ही नहीं जैसे उसकी कदर करनी चाहिए, कि उसने हामिली ने अर्श और इनके इर्द गिर्द वाले फरिश्तों को इस काम पे लगाया हुआ कि वो ईमान वालों के लिए बख्शिश मांगे। वो कैसे बख्शिश मांगते हैं ये भी अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताया कि उनके अल्फाज क्या होते हैं। वो कहते हैं रब्बाना वसेअता कुल्ला शेइन रहमत व इल्मा, ए अल्लाह तू छाया हुआ हर चीज पर अपनी रहमत के एतबार से और इल्म के एतबार से। पहले अल्लाह ताला की तारीफ बयान की उन्होंने, वो तस्बीह और हम तो करते ही रहते हैं, लेकिन दुआ करने से पहले वो किस चीज का वसीला दे रहे हैं, अल्लाह तेरी रहमत बहुत ज्यादा हर चीज पे छाई और तू इल्म भी सारा रखता है। इससे क्या पता चला कि जब हम दुआ करें तो अल्लाह ताला को वसीला दे सकते हैं उसकी सिफात का, उसके रहम का। अल्लाह तू तो बड़ा रहम वाला है, अल्लाह तू तो अरहम और राहिमीन है, ठीक है, तो उसको उसकी रहमत का वास्ता दिया कि अल्लाह तेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है, कोई चीज बाहर नहीं तेरी रहमत से, और तेरा इल्म भी सबको तू जानता है, सबके गुनाहों को, सबकी बातों को, कोई चीज तेरे से छुपी भी नहीं।